Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 or 2342-1050 or 2331-0464. I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल. हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं. हमसे संपर्क करने के लिए डायल कीजिए 2331-4444 2342-1050 या फिर 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले 011 भी लगाना होगा. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार मनोज, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को दिल्ली की इस ठंडी ठंडी शाम से अभिनंदन.
नमस्कार जी. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अमिड सेल ऑफ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. सेंसेक्स स्लिप्स बिलो 78,000 लेवल. निफ्टी शेड्स ओवर 380 पॉइंट्स. Prime Minister Narendra Modi unveils rail infrastructure projects in Jammu and Kashmir, Telangana and Odisha, says projects will boost tourism and socio-economic development. And crude oil prices rise today. Brent crude trades at $76.73 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली. प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक फिसले. सेंसेक्स 78,000 के स्तर से नीचे आया. निफ्टी में 380 अंक से अधिक की हुई गिरावट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया. कहा इन परियोजनाओं से पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़ी. $76.73 प्रति बैरल के आसपास पहुंची. घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा बिकवाली की गई. प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए. लगभग सभी सेक्टर में बिकवाली का दबाव देखा गया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,258 अंक घटकर 77,965 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 389 अंक कमजोर होकर 23,616 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज रही. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.4% से अधिक घाटे में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% से अधिक का नुकसान देखने को मिला.
Now let's take a look at the stocks in detail. Benchmark domestic equity indices today ended sharply lower with losses of over 1.5%. Amid intense selling pressure across all sectors, the 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex tumbled 1,258 points to close at 77,965. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 389 points to settle at 23,616. The broader market indices at the BSE mirrored the equity market. The mid-cap index plunged over 2.4% and the small-cap index tanked over 3%. In the Sensex index, 27 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Tata Steel nosedived over 4%, NTPC lost more than 3.6% and Kotak Bank dropped over 3.2%. Among the top gainers, Titan gained over 0.5%, HCL Tech added 0.26% and Sun Pharma ended flat. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended in negative territory. Among the top laggards, utilities dipped over 4%, power shed over 3.7%, and services lost over 3.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,474 companies declined and 656 advanced, while 114 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 62 companies hit their 52-week high, while 111 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे कमजोर हुआ और अपने न्यूनतम स्तर 85.83 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 108.21 पर चल रहा था.
एंड फ्रेंड्स, नाउ वी जॉइन्ड बाय सतीश सिंगल हु इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. जी सतीश जी. हेलो सतीश जी.
हाँ जी.
सबसे पहले आपके पास जो रेडियो का रेडियो है उसकी वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए. जी जी जी. हाँ जी. आप सवाल पूछिए. वेलकम. जी जी जी. सवाल पूछिए जी. प्लीज.
हाँ हाँ. कोहली साहब या लालिमा जी बोल रहे हैं.
हाँ जी हाँ जी.
हाँ, ये बताएं कि अब ये साल शुरू हुआ है नया 2025, इसमें गोल्ड का और स्टॉक मार्केट्स का क्या फ्यूचर रहेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये जरा प्लीज बताएंगे.
सतीश जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है. पहली बॉल पे बाउंसर मार दिया इन्होंने. देखिए, जहां तक बात गोल्ड की है, पहले मैं गोल्ड पे आता हूं. गोल्ड का मुझे भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप पिछला रिटर्न देखें पिछले साल का गोल्ड का, और पिछले बल्कि 2-3 साल का देखें, तो आप देखेंगे कि उसने किसी किसी साल में तो स्टॉक मार्केट इंडाइसिस को भी बीट किया है. तो उसको देखते हुए, और जो गोल्ड का असल में दिक्कत क्या है कि गोल्ड का दोस्त थोड़ी अशांति है. तो जैसे जैसे विश्व में अशांति फैलती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं, देशों में आपस में तनाव होता है, तो गोल्ड उसमें बढ़ता है. दूसरा, सेंट्रल बैंक्स ने बड़ी बेतहाशा तरीके से गोल्ड खरीदा है, चाइना के और विश्व के अन्य सेंट्रल बैंक. हम तो यहां भी एक मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि शायद गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाले समय में फिर लौट आए, जो किसी जमाने में हुआ करता था कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और करेंसी की स्ट्रेंथ गोल्ड के आधार पर होती थी. तो इस एंटिसिपेशन में गोल्ड को खरीदा जा रहा है. गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी, तो गोल्ड के लिए तो मैं बहुत अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मुझे लगता है, आशावादी हूं कि आपको गोल्ड आप उसमें निवेश कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट इस समय एक करेक्टिव मोड में है, एक रेंज बाउंड है. आप देख रहे हैं कि निफ्टी की बात करूं तो 24,000 के ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है. कई हफ्तों से ऐसे सिलसिला चल रहा है, और ये FIIs FPIs हमारे जो हैं, ये बीच में छुट्टी गए हुए, तो थोड़ा सा राहत थी. मुझे लगता है आज ये काम पे वापस आ गए, तो आज इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिली. आज इन्होंने जरूर बेचा होगा, अलग नंबर अभी निकल रहे हैं उसके. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक का पीरियड क्रूशल है मार्केट के लिए. बाकी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चलें और लंबी अवधि के लिए सतीश जी करें, मुझे लगता है आप सेफ रहेंगे. मैं जब लंबी अवधि कहता हूं तो मैं 3-5 साल की बात करता हूं. मैं ये कुछ लोग 3-5 महीने समझ लेते हैं. तो अगर लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले आप स्टॉक लें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, SIP के जरिए करें. SIP का मेरा मतलब खाली म्यूचुअल फंड से नहीं है, SIP एक तरीका होता है निवेश करने का. आप लें तो स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत पैसा है बनाने के लिए, और मार्केट तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. अभी बजट आ रहा है, हो सकता है कोई बजट में ऐसे अनाउंसमेंट आए जो मार्केट को बहुत पसंद आ जाए और मार्केट इस सब चीजों को दरकिनार करके और एकदम भागने लग जाए. तो मार्केट में थोड़ा संभल के चलिए, अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक लीजिए. गोल्ड आप बेशक ले सकते हैं.
हमारे साथ नोएडा से फोन लाइन पर है पंकज मिश्रा. पंकज जी, स्वागत है, सवाल पूछिए.
हेलो
जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछे.
नमस्कार.
नमस्ते.
को मेरा नमस्कार, और शरद कोहली जी जो सवालों के आंसर देते हैं, सर आपका जवाब नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझाते हैं.
शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच.
नमस्कार.
और मेरा क्वेश्चन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 6 सालों में भी क्या 47 तक हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो डॉलर रुपया है, वो डॉलर की बराबरी कर लेगा या उसे आगे जाएगा?
पंकज जी देखिए, मुझे लगता है ये बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये एक संदेह होता है, एक डाउट होता है. और आज पंकज जी के माध्यम से हम सबको स्पष्ट कर देते हैं कि रुपया डॉलर के तुलना में कितना है, ये किसी देश के विकसित होने का या विकसित ना होने का संकेत नहीं है. इसमें रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, इस समय डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। दोनों बातों में फर्क है। अगर आप थोड़ी अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन करेंगे, फॉरेक्स मार्केट के अंदर डुबकी लगाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि कमजोर होना और उसका मजबूत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि जब हम तराजू लेते हैं तो एक पलड़ा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर ऑटोमेटिकली जाता है, पर इसमें कुछ कुछ ऐसा ही है। तो पंकज जी, करेंसी का कमजोर होना किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक पैमाना नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता पैमाना। बहुत सारे, आपको हैरानी होगी, और मैं आपकी अपनी बात को बड़े अच्छे एग्जाम्पल से दे सकता हूं। बहुत सारे देशों में, चाइना जैसे देशों ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, स्वयं अपनी मर्जी से डीवैल्यू किया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते थे। तो बहुत सारे पैमाने हैं पंकज जी, हम उस राह पे चल पड़े हैं जहां से हम 2047 में विकसित बनेंगे। राह कठिन है, ऊंची नीची है, और उस राह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर अगर सरकार का दृढ़ निश्चय है और जिस प्रकार से विकास की परियोजना, विकास की गति चल रही है, मुझे नहीं लगता हमको को रोक सकता। ये फिर आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे करेंसी की वैल्यूएशन होती है और कैसे करेंसी की स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ बताए।
सिमिलरली जापान इज अ डेवलप्ड प्लेस बट द करेंसी वैल्यू इज लेस।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। वी आर जॉइंड बाय एस मुखर्जी कॉलिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। यस मुखर्जी जी, सवाल पूछे।
सभी को नमस्कार। मेरा
नमस्कार।
मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो है कि अभी कुछ दिनों से एक खबर आ रहा है कि द कॉर्पोरेट्स आर पेइंग लेस टैक्सेस देन द मिडिल क्लास, सैलरी मिडिल क्लास। तो इसको लेके क्या टिप्पणी है जो एक्सपर्ट है हमारे, और आपको क्या लगता है कि अगले बजट में कुछ इससे इसका कुछ बदलाव आने वाला है
जी?
और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मार्केट अभी को जो वोलेटाइल सिचुएशन है, इसका एक कारण तो बोला जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल कारण है
जी,
लेकिन जियोपॉलिटिकल कारण तो बहुत दिनों से ही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं पे कुछ पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आरबीआई हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो, कहीं पे कुछ पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो रहा है?
अच्छा, चलिए मुखर्जी साहब, का पहला सवाल था कि कॉर्पोरेट्स हमसे, मिडिल क्लास से कम टैक्स दे रहे हैं। देखिए, कॉर्पोरेट्स का टैक्स कुछ समय पहले घटाया गया था, आपको याद होगा 1.5 लाख करोड़ के आसपास की राहत दी गई थी। इसलिए दी गई थी क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उनको कॉर्पोरेट का जो टैक्सेशन सिस्टम है मुखर्जी साहब, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सैलरी वालों का होता है या मिडिल क्लास वालों का होता है, इतना वो सिंपल नहीं है उसको समझना। वहां पर जो नई कंपनीज है उनके लिए और है, जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए और है, फॉरेन कंपनीज के लिए और है। तो ऐसा हम सीधे तौर पे नहीं कह सकते, शायद किसी ने 25% सुन लिया होगा तो उसे लगा कि 30% से कम है जो इंडिविजुअल पर टैक्स लगता है। ऐसा मुखर्जी साहब डायरेक्टली नहीं है। अब तो मिडिल क्लास को भी काफी, जब से न्यू रिजीम आया है, 7 लाख से थोड़ा ऊपर तक बल्कि टैक्स नहीं लगता है। हमने तो एक कैलकुलेशन करी तो 15 लाख तक आप अगर इनकम है तो आप आराम से टैक्स को जीरो कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं उसके। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि कॉर्पोरेट्स का ले, और कॉर्पोरेट्स नौकरी देते हैं लोगों को, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, देश की जीडीपी में भागीदारी रहती है। कॉर्पोरेट जो टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट जब लोगों को नौकरी देते हैं तभी तो लोग भी टैक्स देते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कॉर्पोरेट्स का डायरेक्ट आलोचक इस प्रकार नहीं बनना चाहिए। मैं कोई कॉर्पोरेट कैपिटल मार्केट का या कैपिटलिज्म को फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल आपको बात बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा मार्केट में कोई पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है। मार्केट्स तो मुखर्जी साहब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हम लिस्ट बनाए तो बाकी का शो उसी में चला जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से मतलब नहीं होता। आजकल जो हमारे विदेशी मित्र हैं, जो जिसको हम एफपीआईस कहते हैं, वो कभी कभी बीच में रुसवा हो जाते हैं। उन्होंने अपना चाइना में पैसा लगाना शुरू कर दिया, अब उनको क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स हाई पे है, बॉन्ड यील्ड्स, तो उनको लग रहा है अपने देश में पैसा रखा जाए। जियोपॉलिटिकल आपने जिक्र किया, जियोपॉलिटिकल जब सिचुएशन खराब होती है, सबके लिए काम की बात है, तो उस समय आदमी, आपके भी अगर आसपास कहीं झगड़ा हो और आपका बैंक वहां हो, आप कहेंगे बैंक से पैसे निकाल के घर में रख लो, तो कुछ ऐसा ही है। वो लोग पैसा निकाल के अपने यार निवेश करना ठीक समझ रहे हैं, और मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है मुखर्जी साहब। कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है कि अगर आज मार्केट नीचे है तो कल को ऊपर भी जा सकता है। और हम कहां 26,277 को छू के आए, और अभी भी हम लगभग 10% नीचे आए हैं, तो इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है कि, तो आप लंबे समय के निवेशक बनिए मुखर्जी साहब, तो आप ये जो थोड़े से डिप्रेसिंग थॉट्स कई बार आते हैं मार्केट के बारे में, आप उनको भी दूर कर पाएंगे।
आइए चलें ग्रेटर नोएडा, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एसपीएस जैन। जैन साहब स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
नमस्कार जी, कोहली साहब को भी, सभी को, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपको भी शुभकामनाएं,
और कोहली साहब आपका बहुत इंतजार करते हैं, सैटरडे को कभी कभी आप गायब हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता।
ऐसे ही जब मिल जाए उसी को हम तो खुशी मैं तो खुशी मना लेता हूँ जब आपसे बात हो जी।
अच्छा, ये बताइए अभी चेरी पिकिंग का अवसर है या अभी और मार्केट को नीचे जाने की उम्मीद है? नंबर टू
जी,
नंबर टू अभी गवर्नमेंट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं आ रहे हैं
जी,
तो क्या अभी सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए इसको क्या गोल्ड?
ओके, आपका पहला सवाल है चेरी पिकिंग का टाइम है कि नहीं। देखिए चेरी पिकिंग का टाइम तो जैन साहब हमेशा ही रहता है, क्योंकि अब जब मार्केट इतनी करेक्शन हुई है, हम 26 अभी जिक्र हो रहा था 26,200 से आज हम 23,500 के आसपास आ गए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है। तो जो चेरी पिकिंग तो वही करता है जो व्यक्ति को पहचान होती है, उसको हीरे मोती की पहचान होती है, वहां उसको वो भी कहते हैं, आप नगीने उठा लेते हैं अपना ढेर में से, तो बिल्कुल जिनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है उसके लिए अच्छा मौका है। पर लंबे वक्त के लिए जैन साहब, लोग गलती ज्यादातर लालिमा और मनोज ये करते हैं कि लोग मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, उनको लगता है मैंने आज 100 रुपए का लिया, कल 120 का हुआ, बेच दो इसको, और जब वो 200 का हो जाता तब वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों जल्दी बेच दिया, मेरा 80 रुपए का नुकसान हो गया। उल्टा उनको बल्कि प्रॉफिट नहीं दिखता, फिर नुकसान दिखता है। तो इसलिए चेरी पिकिंग करिए, पर लंबे वक्त के लिए करिए। बिल्कुल, आप तो बहुत वेटरन है मार्केट के मामले में। दूसरा, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पूछा, सेकेंडरी मार्केट से आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर आप ये देखिए कि आपको प्राइस बहुत महंगी ना मिले। गोल्ड इस समय 80,000 के आसपास है, तो अगर आपको बहुत महंगा नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं। ये सच है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इशू अब गवर्नमेंट ने नहीं निकाले, बल्कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद जो कस्टम ड्यूटी की रिलीफ दी थी गोल्ड के इम्पोर्ट्स पर, शायद वो भी गवर्नमेंट उसको रिकंसिडर करे, क्योंकि इतना ज्यादा गोल्ड कंजम्पशन बढ़ गया, इतना ज्यादा गोल्ड आना शुरू, हमारा इम्पोर्ट बिल गोल्ड के इम्पोर्ट्स की वजह से बढ़ना हो गया। कहां तो हम तेल वेल की बात करते थे, पर गोल्ड ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो अब गवर्नमेंट सोच रही भैया ये तो यहां तो कितना भी गोल्ड आ जाए कम है। मुझे लगता है हमारी बहनें और माताएं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है गोल्ड की कंजम्पशन में, तो इसलिए बिल्कुल ले सकते हैं, पर बहुत महंगा जैन साहब मत लीजिएगा, मार्केट से थोड़ा बहुत फर्क हो तो आप ले सकते हैं जी।
ऑलराइट, फ्रॉम वन रेगुलर कॉलर टू अनदर रेगुलर कॉलर, वी आर नाउ जॉइंड बाय प्रेम पुजारी कॉलिंग अस फ्रॉम फरीदाबाद। जी सवाल पूछिए।
हाँ जी, कोहली जी को नमस्कार।
नमस्कार प्रेम पुजारी जी।
कोहली जी आते हैं तो हम ये आपसे सवाल जरूर पूछते हैं, हमें ये पूछना लगता है। कोहली जी, आपने पिछली बार पुराने साल में हमें एक बात बताने के लिए वादा किया था कि गोल्ड के बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। 2-3 kg अगर गोल्ड खरीदना हो तो इसके लिए आपने कहा था इसका फंडा होता है, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम लेके आपसे ये बात पूरी करूंगा। और दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड पे हॉलमार्क होता है और चांदी पे भी हॉलमार्क आने का अभी बात हो रही है, और एक तीसरा बात और कि बैंक वाले यूनिट बेचना चाहते हैं प्राइवेट बैंक, 2 लाख पे 80,000 साल का रिटर्न करेंगे 12 साल तक, इस बारे में जरूर बताएं। 3 सवाल, धन्यवाद।
गोल्ड का प्रेम पुजारी जी, आपने कहा था आप 2-3 किलो गोल्ड खरीदना चाहते हो, 2-3 किलो गोल्ड तो अगर मैं ठीक एस्टिमेट कर रहा हूँ करीब 2.5 करोड़ के आसपास का हो गया आज की प्राइसेस पे, 2,40,00,000 रुपए का। आप, मैं देखिए मना तो नहीं करूंगा, पर हम लोग जनरली जो गोल्ड का एलोकेशन रिकमेंड करते हैं 15-20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। तो अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है तो फिर तो 2-2.5 करोड़ का सेंस बनता है, पर सारा का सारा पैसा आप गोल्ड में लगा दें, ये शायद मैं इसके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन अपनी दिखाऊंगा कि आपको सारा पैसा तो नहीं लगाना चाहिए। सिल्वर की, जी हाँ, हॉल मार्किंग की बात हो रही है, इनफैक्ट कुछ लोग हॉल मार्किंग करके बेच भी रहे हैं सिल्वर को, कुछ जगह हॉल मार्किंग होने लगी है सिल्वर की मिलावट को चेक करने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरा, आपने इन्होंने बैंक के यूनिट की पूछी, मुझे लगता है शायद ये किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को हम बार बार अपने श्रोताओं को ये बात बताते हैं कि आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लीजिए, निवेश को निवेश की तरह लीजिए। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं निवेश के रिटर्न में, आरओआई में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मतलब जब आप उसको, आपको इंश्योरेंस करेंगे और साथ में आप निवेश का भी, आजकल बहुत मिक्स प्रोडक्ट आते हैं, तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं निवेश के बड़े संसाधन उपलब्ध हैं, इंश्योरेंस की उपलब्ध है, तो मुझे लगता है आप उसी की बात करें पूरी तरह से। मैं आपका तीसरा वाला जो हिस्सा था वो समझ तो नहीं पाया, पर आप कह रहे हैं बैंक यूनिट दे रहा है इतना रिटर्न देगा, अगर उसमें इंश्योरेंस नहीं है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज पूरी स्कीम आप जब बताएंगे तब समझ में आएगी। अभी तो आपने मुझे आउटलाइन सी एक दी।
यहां पर जो मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ऐसा तो इनका सवाल नहीं है कि कोई प्राइवेट बैंक की इन्होंने चर्चा की, तो वो बैंक कैसा है, उसके नेचर को भी हमें समझना होगा, और पोंजी स्कीम तो नहीं है कि आपको बहुत अधिक मुनाफा इतने वर्षों तक लगातार देने की गारंटी दे रहा है।
देखिए मनोज, अगर प्राइवेट बैंक भी है तो भारत में कोई भी प्राइवेट बैंक बिना रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग के नहीं चल सकता है। रिजर्व बैंक की आंसरेबिलिटी उसकी बनी रहेगी, जवाबदेही रहेगी, और बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इसमें। कोऑपरेटिव बैंक की मैं बात नहीं करता, क्योंकि कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और उसमें थोड़ा सा ओवरलैप होता है, तो इसलिए आप पूरी खोल के बताएंगे। प्रेम पुजारी जी तो हमारे रेगुलर मेरे ख्याल श्रोता है, अगली बार प्रेम पुजारी जी आप पूरी स्कीम प्रेम से बताइएगा, तब हम इस पे कमेंट करेंगे जी।
ऑलराइट, Let's move on with some more news. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of various railway projects through video conferencing. In a key move to further boost connectivity in the region, the Prime Minister inaugurated the new Jammu Railway Division. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that the launch of rail infrastructure projects in Jammu Kashmir, Telangana and Odisha will promote tourism and add to socio-economic development in these regions. The Prime Minister added that the country is engaged in achieving the resolution of a developed India, and for this, the development of Indian railways is very important. He highlighted that the government is taking forward the development of railways on the four parameters of modernization of infrastructure, modern facilities to railway passengers, railway connectivity in every corner of the country, and job creation and supporting industries.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में हितधारकों और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ आठवीं बजट पूर्व सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की. बैठक केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने से पहले आयोजित की गई. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा वित्त निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
And now we're joined by Gautam, calling us from Ghaziabad. Ji, Gautam ji, please ask a question.
Good evening, Marty Mandar. Happy New Year to everybody.
Yeah, same to you. Yeah.
मेरा एक छोटा सा doubt है. मैं expert से पूछना चाहता हूँ. Share sale को लेकर tax implication से लेकर है ये. मान लीजिए मैंने X share खरीदे 100 units 3 साल पहले 100 रुपए में.
जी.
और मैंने दोबारा वही X share खरीदे 3 महीने पहले 50 रुपए में. आज मैं अगर वो 50 शेयर बेचता हूँ 125 रुपए में
जी.
तो आज की डेट में क्या मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा? इसमें क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल चलता है? क्या इसकी इम्प्लीकेशन?
जी हाँ गौतम जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है. जी हाँ बिल्कुल, फीफो उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगता है. आपने क्योंकि कुछ पहले खरीदे कुछ अब खरीदे, अब सवाल ये उठता है कई बार लालिमा मनोज के भाई कौन से बेचे, ये बेचे कि वो बेचे, क्योंकि हालांकि शेयर्स पर डिस्टिंक्टिव नंबर्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है. जी हाँ बिल्कुल गौतम जी, आपने सवाल का आंसर भी ठीक गेस किया, फीफो लगेगा. तो आप फीफो के हिसाब से जो आपने पहले खरीदे हैं वो पहले बेचे माने जाएंगे, जो बाद में खरीदे उनको आप बाद में ट्रीट करेगा. बिल्कुल, आपने तो स्वयं जवाब दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया.
आइए चलें बेंगलोर, वहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एनआर प्रसाद. प्रसाद साहब स्वागत, सवाल पूछिए.
हाय गुड इवनिंग मार्केट मंत्री
जी.
गुड इवनिंग लालिमा जी.
गुड इवनिंग
मनोज जी.
गुड इवनिंग.
गुड इवनिंग शरद जी.
गुड इवनिंग.
आई विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर.
थैंक यू, सेम टू यू. या
शरद जी, देयर आर टू क्वेश्चंस.
या
इवन लास्ट वीक यूएस मार्केट अप बाय 1.75%.
या
But only in India, it is has come below 78,000, and it was above 85,000 just 3 months back.
Yeah.
But on top of that, this year 2025, 1 lakh crore worth IPOs are coming. Really, I'm unable to understand. You mean to say the public is going to invest so much of money in India? What exactly is the reason for falling of market, other than the geopolitical?
Okay, all right.
Including that, that's one.
Okay, all
my
right.
My second question, one more question. See, there's one company recently has announced for every 10 shares, they will get one share because the company itself getting split into two companies.
Yeah.
Now, if I'm holding 35 shares, say fractional, ideally I should get 3.5 shares of the new company.
Yeah.
In India, the fractional shares is not possible. Only in the U.S. Stock exchange, you can buy fractional. But how would they compensate on the value wise? That is more important. How they compensate this one? These are my two questions.
Yeah, Mr. Prasad, your first question on the U.S. market, why the IPOs are coming despite. See, the IPO planning is done at least 4 to 5 months in advance. So probably when these IPOs were planned, the markets were hunky-dory, the markets were doing fine. But then, with the markets, it's very difficult to predict what happens when. And then the FPI and the FII selling happened and, it was unabated. It just went on and on. And, it still continues as we enter the new year. The first 2-3 days of the new year were very good. But then I think they are back from their holiday and they're up and they are selling again. So the IPOs have been absorbed very well, Mr. Prasad. And minor corrections in the market, Mr. Prasad, unless there is a very severe bearish phase in the market, the IPOs do not fail.
Even if you see the recent IPOs which were launched, most of the good IPOs have been oversubscribed. So I think the IPO market is different. Those investors, they keep looking for those opportunities to make quick profits and exit. So I think IPO market by this 10% correction may not get impacted. And your second question was lighting fraction. So when there is a fraction, normally the company rounds it off. So either they'll round it off to 3 or they'll round it off to 4 shares. So you need not worry. That is just leave it to the company to, as to how to compensate you for the half the share which you're getting in your kitty. Just leave it to the company. I'm sure they'll sort it out for you. Thank you.
All right. We are now joined by Ranjit Kumar. He's calling us from Delhi. Ji, Ranjit ji, sawal puchhega apna.
Good evening, Mark.
Good evening. Ji.
Kohli sir, mera sawal do hai. Sir, pehla ki sovereign bond ek demat se dusre demat mein kaise transfer hoga? Aur dusra sawal hai ki ye saal market ke liye kaisa rehne wala hai?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का शायद पूछ रहे हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब तो रंजीत जी डीमैट अकाउंट में होल्ड होते हैं, तो डीमैट अकाउंट में तो ट्रांसफर करना बहुत आसान है. आप एक डीमैट अकाउंट जिस बैंक में आपका है उसके पास एक रिलीज स्लिप होती है, ट्रांसफर स्लिप कहते हैं, आप वो साइन करेंगे और जिसके फेवर में आप साइन करेंगे तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. और अब तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी होता है, तो जैसे बाकी शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देने लग जाएगा. दूसरा आपने पूछा मार्केट इस साल कैसे दिखेगी, 2025 की शुरुआत हुई है. मार्केट मुझे लग रहा है कि शुरू के जो 3-4 महीने रंजीत जी वो थोड़े मार्केट के लिए चैलेंजिंग हैं. हालांकि उसमें एक बजट भी आएगा, बजट में कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स आई तो मार्केट ऊपर भी जाएगी. तो वॉलिटिलिटी मुझे लग रहा है इस साल बहुत ज्यादा रहेगी बाकी सालों के मुकाबले. पर ओवरऑल लॉन्ग रन में मार्केट हमारी बहुत अच्छी है. भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे तेज बढ़ने वाली अवस्था है. तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो भारत की परिस्थिति बहुत अच्छी है. कोई क्वार्टर ऊपर कोई क्वार्टर नीचे जरूर हो सकता है, उसको हम अंग्रेजी एक शब्द होता है एबरेशन, कि बीच-बीच में ऐसे फेसेस आएंगे. पर ओवरऑल आपको मार्केट लॉन्ग टर्म में मैं बहुत भविष्य भारतीय मार्केट का उज्जवल है, पर लंबे अवधि के लिए आप इसको लेके चल लीजिए.
हमारे साथ हैं दिल्ली से नंदगोपाल जी. समय कम है नंदगोपाल जी, जल्दी सवाल पूछिए.
एक मिनट, ये मेरा पहली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरी इनकम 6,50,000 है आफ्टर क्लेमिंग 1 लाख रिबेट अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
जी.
तो ये न्यू टैक्स रिजीम का एग्जाम्पल हो गया.
जी हाँ बिल्कुल, आपको अनंत गोपाल जी पढ़ा होगा एक सेक्शन 87A होता है जिसके अंतर्गत 25,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है, वो 7 लाख इनकम तक वो चला जाता है. तो आपकी इनकम तो 7 लाख से नीचे मुझे सुनाई दे रही है, तो बिल्कुल आपको मिलेगा और आपको आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. बाकी थोड़ी सी टैक्स की निटिग्रिटीज होती है, अगर आप थोड़ा और खोल के मुझे बताएं सोर्स ऑफ इनकम क्या है. हालांकि आपने इन्होंने 112A का बताया, तो प्राइमर फेसिया मुझे लग रहा है कि टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 7 लाख से कम है.
आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां मिला जुला रुख है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.5%, हांगकांग का हेंगसेंग 0.37% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.14% घाटे में रहे. उधर निवेशकों की लिवाली से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली थी. फ्रांस का कैक 40 1.7%, जर्मनी का डेक्स 1.2% और लंदन का फुटसी 100 0.11% ऊपर चल रहा था. वैश्विक जगत पर ध्यान दें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. ये प्रतिबंध पूरे अटलांटिक तट सहित कई क्षेत्रों में लागू होगा.
वेल ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग एट $76.73 पर बैरल, एडिंग ओवर 0.2%. WTI क्रूड आल्सो गेन्ड ओवर 0.3% टू ट्रेड एट अराउंड $74.19 पर बैरल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स.
सर्राफा बाजार पर ध्यान दें तो सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना थोड़ा सा बढ़कर 77,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी बढ़त के साथ 90,750 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. MCX में भी आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा भाव तेज चल रहा था. और बस यही, श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. थैंक यू मनोज, थैंक यू लालिमा.
थैंक यू जी. एंड नाउ बिफोर वी क्लोज फ्रेंड्स, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अमिड सेल ऑफ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. सेंसेक्स स्लिप्स बिलो 78,000 लेवल. निफ्टी शेड्स ओवर 380 पॉइंट्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर, तेलंगाना एंड उड़ीसा. सेज प्रोजेक्ट्स विल बूस्ट टूरिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 5%. And crude oil prices rise today. Brent crude trades at $76.73 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Patik, signing off. Namaskar.